الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله مولانا العظيم آپ کا یہ پاٹن شہر جتنی ہسٹری میں جانتا ہوں بہت ہی ایتیہاسک شہر ہے. اور اس ورلڈ میں دنیا میں بہت سارے کنٹری اور دیش ایسے ہیں جو بھارت کے دلی ممبئی کو جانتے ہیں تو ساتھ میں آپ کے شہر پاٹن کو بھی جانتے ہیں. چونکہ میں کوئی بات ایسی نہیں کہتا ہوں, جگت کے پانچوں کھنڈ کے میں سفر کر چکا ہوں, کوئی کھنڈ باقی نہیں ہے. آپ کی اس دھرتی کے اوپر ایسے سپوت پیدا ہوئے ہیں کہ جن سپوتوں نے پیغمبر صاحب یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پویتر وانی ہوتی ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں, اس کی ایسی سیوا کی ہے اور ایسے ایسے پستک لکھے ہیں کہ آج عرب جگت کے اندر بھی پاٹن کا نام لوگ جانتے ہیں. اسی لیے میں تو اپنا سدھاگیہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس پوتر بھومی کے اوپر آج مجھے حاضری کا موقع ملا. شاید مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ زندگی میں دنیا دیکھنے کے بعد مجھے پاٹن دیکھنے کو موقع ملا. اسی لیے میں بہت خوش نصیب ہوں, میں اپنا سدھاگیہ سمجھتا ہوں کہ آج میں پاٹن کی زمین کے اوپر ہوں, اس پوتر بھومی کے اوپر آج مجھے میرے اللہ نے حاضری کا موقع دیا. دوسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آج کا یہ اتنا خوبصورت اتنا پیارا پروگرام, اس پروگرام کے لیے اتنی بات کہوں گا کہ یہ جو پروگرام یہاں ہو رہا ہے جمعیت علماء پاٹن ضلع کی طرف سے, یہ آج کے سمے کی ہمارے دیش کی سب سے بڑی ضرورت ہے. جمعیت علماء پاٹن ضلع کے پریسیڈنٹ صاحب ابھی آپ کو ایک بات کہہ رہے تھے, میں اسی بات کو اپنے شبدوں میں دہراتا ہوں, ریپیٹ کرتا ہوں, تھوڑا سا اپنی طرف سے اس میں سے ایک دو بات بڑھا کر دے. میرے وڈیلو, اس دیش کی آزادی ہندو مسلم قومی ایکتا کی طاقت سے ہوئی ہے. اگر اس آزادی کو ہمیں صدا باقی رکھنا ہے تو اس کے لیے بھی ہندو مسلم قومی ایکتا بہت ضروری ہے. और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम सब देशवासी एक होकर के बैठे हैं। इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबी है कि न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, हमारा तिरंगा झंडा लहरा रहा है और इस झंडे के साये में हम मिलजुल करके बैठे हैं। और कौमी एकता के ऊपर मैं अपने एंड बात के जो पूरा करूंगा तब भी एक दो बात कहूंगा, लेकिन एक बात मैं बहुत खास कहना चाहता हूं। चूंकि इस डिस्ट्रिक्ट में पहली मर्तबा आना हुआ, वरना हमारी डिस्ट्रिक्टों के अंदर सब कौम के लोग मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूं, उनके साथ फैमिली रिलेशन है और केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ भी हमने बहुत मर्तबा प्रोग्राम किए हैं। मैं सब जगह एक बात कहता हूं कि अगर हिंदू मुस्लिम और सभी धर्म के लोगों में कौमी एकता आ गई जैसी होनी चाहिए, बहुत जवाबदारी से मैं अपने शब्द कह रहा हूं, इस देश के बसने वाले तमाम धर्म के लोगों में जैसी कौमी एकता होनी चाहिए वैसी आ गई तो ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, 10 साल के बाद 11वां साल ऐसा आएगा कि हमारा देश दुनिया की इंशाल्लाह महासत्ता बन जाएगा। हिंदुस्तान के पास, हमारे देश के पास कुदरती सोर्सेस बहुत है, मिनरल्स बहुत है। इस देश का माइन पावर, इस देश के नौजवानों के पास जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी पावरफुल है कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी महासत्ता हमारे माइन पावर से परेशान है। और मैं बहुत जवाबदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग हमारे भारत देश की प्रगति से डरते हैं वही लोग हमारे दरमियान में फाटफूट कराना चाहते हैं। जिनको खतरा है, जिनको डर है इस जगत के अंदर, इस दुनिया के अंदर भारत देश से, वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस देश के लोग एक होकर के रहे। आओ आज के इस प्रजासत्ताक दिन में हम लोग ये दृढ़ निर्धार लेकर के उठे कि हम ऐसी तमाम ताकतों की तमाम कोशिशों को नाकाम करेंगे और हमारे देश में एक कौमी एकता और शांति का माहौल पैदा करेंगे। अब मैं आऊं जरा हिस्ट्री और इतिहास की तरफ। ये गणतंत्र दिन, प्रजासत्ताक दिन, ये हमको बाद में मिला, पहले आजादी मिली। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। 1950 26 जनवरी को हमारे देश के अंदर हमारा बंधारण प्रैक्टिकली तौर पर आया है। ये आजादी जो मिली ये हजारों नहीं बल्कि लाखों देशवासियों की शहादत के बाद ये आजादी मिली है। आज के इस प्रोग्राम में मैं उसकी थोड़ी हाइलाइट्स आपको सुनाता हूं और जो भी मैं कहूंगा रेफरेंस के साथ कहूंगा, कोई भी बात हमारी ऐसी नहीं होगी, रेफरेंस एक एक हमारे पास मौजूद है। सत्रह सो सत्तावन आज 2015 में हम हैं। 1757 में पलासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला, उन्होंने अंग्रेजों के सामने सबसे पहली सशस्त्र जंग लड़ी है। वहां से हमारा शानदार इतिहास चालू होता है। 1757 से 1947 190 बरस तक हमने अपने देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी हैं। ये 190 साल का इतिहास, आप मुझे यूं कहो कि एक प्रोग्राम में मैं आपको सुना दूं, दिस इज इम्पॉसिबल मैटर, हो ही नहीं सकता। जब तक आप लोग सुनने में साथ देंगे वहां तक हम आपको सुनाएंगे, और जब देख लेंगे कि आपका सुनने का कोटा पूरा हो गया, हम भी अपनी बात पूरी कर देंगे। 1757 में पलासी के मैदान में सबसे पहले नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ी। और देखो दोस्तों, एक बात कहता हूं, बुरा मत लगाना, सब अपने देशवासी मिलजुल के बैठे हैं। जितना अपनों को अपनों से नुकसान पहुंचता है, इतना परायों से भी नहीं पहुंचता। एक कुवाड़ा होता है गुजराती में, जिसको कुवाड़ा कहते हैं, जिससे दरख्त झाड़ काटने का काम करते हैं। उसमें दो चीज होती है, एक लोखंड का आगे काटने वाला होता है और पीछे लकड़ी का हाथा होता है, तो जाकर के वो कुवाड़ा काटने का काम करता है। तो गुजराती चौपड़ी में हमने एक स्कूल में एक पाठ पढ़ा था कि एक दिन एक लकड़ी काटने वाला जंगल में गया लकड़ी काटने के लिए, झाड़ को काटने के लिए, और अपने साथ वो लोखंड का कुवाड़ा लेकर गया, उसमें हाथा लगा हुआ नहीं था। तो काल्पनिक बात वो पाठ के अंदर लेखक ने बनाई है कि जब वो लोखंड का कुवाड़ा लेकर के लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया, तो जंगल के झाड़ आपस में बात करते हैं कि नो वॉरी, कोई घबराने की बात नहीं, ये सिर्फ लोखंड के हाथे से हमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और लकड़ी काटने वाले ने भी जंगल में जाके बहुत मेहनत की, लेकिन दो चार छोटी छोटी डाड़कियों को वो काट सका, कोई बड़ा लकड़ा काट नहीं सका। दूसरे दिन जब वो जंगल में गया तो उसने वो लोखंड के कुवाड़े के साथ लकड़ी का हाथा लगाया और कंप्लीट कुवाड़ा तैयार करके जंगल में गया। तो जंगल के झाड़ आपस के अंदर बात करते हैं कि अब हमको कोई बचा नहीं सकता, इसीलिए कि हमारे अंदर से एक आदमी गद्दार होके उसके साथ मिल गया है। हमारे ही अंदर से एक गद्दारी करके उनके साथ मिल गया है, इसीलिए अब हमारी खैरियत नहीं है। ये बहुत कुछ समझने की बात है कि जितना नुकसान अपनों से पहुंचता है उतना गैरों से भी नहीं पहुंचता, अजनबियों से भी नहीं पहुंचता। और यही बात कुरान ने कही, फरमाया के वला तजस्सु वला यगतब बादुकुम बादा, ये पैगाम है कुरान का। तो नवाब सिराजुद्दौला जो हार गए अंग्रेजों के सामने, उसमें अपनों की गद्दारी ज्यादा थी, दुश्मनों की ताकत कम थी। उसके बाद दूसरा मौका याद करो, सुल्तान टीपू शहीद को, मैसूर के बादशाह सुल्तान टीपू शहीद, आज लोग उनको जानते नहीं हैं कौन थे। हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, आपको मालूम ना हो तो आपकी जानकारी के लिए बात कह दूं, अभी गुज़िश्ता बरस हमारी भारत सरकार ने मौलाना मदनी की याद में पोस्टल टिकट बार पाई है। वो है मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके उस्ताद, उनके गुरुजी शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी याद में भी हमारी भारत सरकार ने टपाल टिकट बार पाड़ी है। और भारत के हमारे राष्ट्रपति माननीय प्रणव मुखर्जी के हाथ से दिल्ली के अंदर जिस वक्त पर उस टिकट का विमोचन हुआ, मैं उसके अंदर मौजूद था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दोनों वो इंसान थे, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी और मौलाना हुसैन अहमद मदनी, के आजादी के 65 साल के बाद भी हमारे देश ने उनकी याद के अंदर टिकट बार पाड़े। ये वो आजादी के हीरो थे। खुद मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सुल्तान टीपू शहीद कौन थे, का सुल्तान टीपू शहीद वो इंसान थे जो अपने जमाने के कुतुब और अब्दालों के सरदार थे, मामूली इंसान नहीं थे। मैं आपको इतिहास के रेफरेंस के साथ बताऊंगा, 1799 में श्री रंगापट्टनम के मैदान में जब अंग्रेजों के साथ सुल्तान टीपू की लड़ाई हुई है, तो यह पहला मौका था जिसमें सुल्तान टीपू ने मिसाइल को इस्तेमाल किया था भारत देश को अंग्रेजों के से बचाने के वास्ते। यह मिसाइल की थियरी, मिसाइल की टेक्नोलॉजी, ये सुल्तान टीपू शहीद की पूरी दुनिया को देन है। अंग्रेज हैरान रह गए श्री रंगापट्टनम के मैदान में जब सुल्तान टीपू ने मिसाइल छोड़ा, और वो जो खाली खोखला मिसाइल का बच गया उसको वो यूरोप ले गए, और उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करके आज के जमाने के नए मिसाइल बनाए। ये सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे। और मैं आपको इतिहास बतलाऊं, 1799 में श्री रंगापट्टनम के मैदान में सुल्तान टीपू जब जमीन के ऊपर गिरे और शहीद हुए, अल्लाह ने कुदरती तौर पर उनके चेहरे के ऊपर ऐसा रौब और दबदबा अता फरमाया था कि शहीद होकर जमीन पर गिरने के बावजूद किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं हुई कि वो सुल्तान टीपू शहीद के करीब में भी जा रहे, पास में भी जा रहे। 3 दिन गुजर गए उनकी लाश के, 3 दिन गुजरने के बाद जब उनको यकीन हो गया कि सुल्तान टीपू शहीद हो चुके, तो 3रे दिन अंग्रेज जनरल लॉर्ड हॉर्स, वो यूनियन जैक इंग्लैंड का झंडा लेकर के सुल्तान टीपू की लाश के पास पहुंचा, और सुल्तान टीपू की लाश के सीने के ऊपर बैठा, और बैठ करके उसने यूनियन जैक सुल्तान टीपू के सीने के ऊपर घाड़ दिया, और घाड़ने के बाद कहता है कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। जब तक सुल्तान टीपू शहीद हयात रहे, वहां तक उनमें ये हिम्मत नहीं हुई कि वो हिंदुस्तान को अपना कहे। जिस दिन सुल्तान टीपू शहीद की लाश गिरी, उस दिन 3 दिन गुजरने के बाद जनरल हॉर्स ने 1799 में सुरंगापट्टनम के मैदान में ये ऐलान किया कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। मैसूर में सुल्तान टीपू को शहीद करने के बाद फिर अंग्रेज लोगों ने दिल्ली की तरफ रुख किया। जब अंग्रेज फौज दिल्ली की तरफ आई, 1806 ईस्वी के अंदर सबसे पहले हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया कि अब हमारा देश गुलाम हो चुका है, उसको आजाद कराना ये हमारे लिए फर्ज बनता है। ये फतवा फतावा अजीजिया के सफा नंबर 17 के ऊपर छपा हुआ मौजूद है। یہ سب سے پہلے عالم دین ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانا فرض ہے, ہر مسلمان کی جواب داری ہے, ہر دیش واسی کی جواب داری ہے, اس کا سب سے پہلا فتویٰ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے دیا 1831 کے اندر بالاکوٹ پنجاب میں حضرت شاہ اسماعیل شہید اور حضرت سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے ساتھ اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ لڑتے لڑتے جان دے دی اور اپنے سینکڑوں ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو کر بالاکوٹ کے اندر انہوں نے اپنی قبر بنائی. پھر 1857 کا موقع آیا. 1857 میں جب دلی کے لال قلعے کے اوپر سے ہمارا ترنگا جھنڈا اتار لیا گیا اور انگریزوں کا یونین جیک وہاں پر لہرا دیا گیا اور انگریزوں نے اعلان کیا کہ ملک آج سے ہماری مالکی میں ہے اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو آرڈر ہوگا اس کے مطابق بھارت دیش چلے گا, تو ہمارے سب دیش واسی انگریزوں کے سامنے لڑنے کے لیے میدان میں آئے. میں اپنی بات نہیں کہتا ہوں, ڈاکٹر ولیم نے خود لکھا, انگلینڈ رپورٹ بھیجی پارلیمنٹ کو, جو انڈیا لائبریری لندن میں وہ رپورٹ موجود ہے انگلش میں لکھی ہوئی. اس رپورٹ میں ڈاکٹر ولیم نے خود لکھا برٹش گورنمنٹ کو کہ 1857 کی لڑائی کے اندر 200,000 مسلمانوں کو ہم نے قتل کیا ہے. آگے ڈاکٹر ولیم خود لکھتے ہیں انگریز کہ 1857 کی لڑائی کے اندر 51,000 مولویوں کو ہم نے پھانسی کی سزا دی ہے. یہ خود ڈاکٹر ولیم کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں. 1857 میں شاملی جو میرٹھ کے پاس ہے, شاملی کے میدان کے اندر ہمارے سب یہ اکابرین دیوبند یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر ستھاپک حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کے بانی حضرت مولانا محمد مظہر صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, ان تمام نے مل کر کے شاملی کے میدان میں انگریزوں کا مقابلہ کیا. اس زمانے کا ایک قصہ میں آپ کو عجیب سناتا ہوں. ہم نے اس دیش کی آزادی کی لڑائی ہمارے بڑوں نے جو لڑی تھی وہ اپنا دھارمک فریضہ سمجھ کر کے لڑی تھی کہ ہم اس دیش کے رہنے والے ہیں, یہ ہمارا وطن ہے, ہمارا دھرم اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم ہمارے ملک کو آزاد کرائیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے یہ لڑائی لڑی تھی. 1857 میں شاملی کے میدان میں بہت سارے ہمارے بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے اکابرین شہید ہوئے, اس میں حضرت حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ بھی شہید ہوئے. ان کی قبر آج بھی تھانہ بھون کے اندر موجود ہے. اور آپ کی جانکاری کے لیے بتلاتا ہوں, فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے نا, تو فضائل اعمال جس بزرگ نے لکھی ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری سالوں میں ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے, لیکن جب کوئی ہندوستان سے آتا تھا تو فرماتے تھے کہ تھانہ بھون میں جہاں حضرت حافظ زامن شہید کی قبر ہے और उस कब्र के ऊपर बोर का जो झाड़ है, बोर्डी है, उसके ऊपर से मेरे लिए बोर लेकर के आना। हिंदुस्तान से मदीना मंगवाते थे। और हजरत मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह उस बोर को अपने मुंह में रख करके चूसते थे और ये फरमाते थे कि हाफिज जामिन शहीद की कब्र पर जो बोर्डी है उसके बोर में से मुझे जन्नत का मजा आता है। ये वो हमारे अकाबरीन थे जिन्होंने 1857 में शामली के मैदान में जो शहीद हुए। बुजुर्गान मोहतरम, ये हमारे अकाबरीन की दास्तानें हैं। 1757 से 1857 तक लाखों अहले ईमान ने, उलमा ने, मुफ्तियों ने इस देश की आजादी के वास्ते कुर्बानी दी। सर थॉमसन जो एक अंग्रेज इतिहासकार है, उन्होंने लिखा है अपनी बुक के अंदर कि 1857 में हजारों लोगों के कत्ल के बाद अंग्रेजों ने पूरे देश में धरपकड़ चालू की और उनके ऊपर केस चलाने चालू किए, और 1864 से लेकर 1867 तक 3 बरस के अंदर 14,000 मौलवियों को हमने गद्दारी की वजह से फांसी की सजा दी। ये सर थॉमसन ने लिखा है 64 से लेकर 67 तक में 14,000 आलिमों को हमने फांसी की सजा दी। बुजुर्गान मोहतरम, हजरत शेखुलहिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह वो इंसान थे, अंग्रेजों की दुश्मनी उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। कहते थे कि दरिया के अंदर भी अगर 2 मछली लड़ती होगी तो मैं कहूंगा कि उसमें भी अंग्रेजों का हाथ है। इसीलिए कि ये इनकी पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ राज करो का उनकी हर चीज से मुझे नफरत है। तो हजरत शेखुलहिंद रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने पूछा कि हजरत अंग्रेज की कोई बात तो अच्छी होगी, आप तो कहते हैं उनकी हर चीज बुरी है, कोई चीज तो अच्छी होगी। तो हजरत शेखुलहिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया उनके कबाब बहुत अच्छे होते थे, यानी उनको काट के कबाब बनाओ तो बहुत अच्छे होते हैं। और हजरत शेखुलहिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद होते हैं। मौलाना इलियास साहब मौलाना इलियास बने, हजरत शेखुलहिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी के पास पढ़ करके, इतने अजीम इंसान थे। मोहनदास करमचंद गांधी जो अफ्रीका से बैरिस्टर की नौकरी छोड़कर के इंडिया आए, उस बैरिस्टर को महात्मा गांधी बनाने वाले हजरत शेखुलहिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह थे। मैं बहुत जवाबदारी से एक एक बात कहता हूं रेफरेंस के साथ। डॉक्टर मेवाराम गुप्ता, उन्होंने ये बात लिखी कि जब 1920 में हजरत शेखुलहिंद रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की जेल से छूट करके आए, अंग्रेजों ने उनको माल्टा की जेल में डाला था, ये वो हिंदुस्तान के सपूत थे जिनको भारत देश से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में माल्टा टापू के अंदर देश की आजादी के लिए जेल में डाला गया था, और जिन्होंने रेशमी रुमाल चरवर चलाए थे, उसी रेशमी रुमाल चरवर की याद में हमारी भारत सरकार ने टिकट बार पाड़ी है। वहां माल्टा की जेल में जब हजरत थे तो अंग्रेज उनके ऊपर जुल्म करते थे, इतना जुल्म करते थे कि जिस कोठरी में उनको बंद किया गया था वहां जहरीले नाग और जहरीले सांप उसके अंदर छोड़ते थे। جب زہریلے سانپ آتے تھے تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے، حسین احمد اللہ اللہ کا ذکر شروع کرو، یہ زہریلے سانپ آئے ہیں۔ حضرت نے لکھا ہے سیرت مالتا میں، آپ پڑھ لیجئے پوری داستان، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب وہ زہریلے سانپ آتے تھے حضرت مدنی بیٹھ کر کے اللہ اللہ کا ذکر شروع کر کے خدا کی شان، وہ زہریلے سانپ بھی کھڑے ہو کر اپنی فین کو ہلاتے ہلاتے ذکر میں لگ جاتے تھے۔ انگریز برف پڑی ہوتی، آج تو ہم اتنی ٹھنڈی میں گھبرا جاتے، یوروپ میں برف پڑتی ہے، مائنس ٹھنڈی جاتی ہے وہاں، مالٹا کے پورے ٹاپو پر برف ہوتی، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو رات کو اٹھاتے تھے نیند میں سے، اور اٹھا کر کے کپڑے نکال کر کے برف کے اوپر الٹا سلاتے تھے، اور الٹا سلا کر کے ان کی پیٹھ کے اوپر چابک مارتے تھے، اور گرم گرم سلیے لال کر کے حضرت شیخ الہند کی پیٹھ کے اوپر دام دیتے تھے، اور کہتے تھے محمود حسن بس اتنا کہہ دو کہ میں انگریزوں کا ویرودھی نہیں ہوں تو میں ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت شیخ الہند فرماتے جان دے سکتا ہوں، موت کا پیالہ پی سکتا ہوں، لیکن اپنی زبان سے یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں انگریزوں کا ویرودھی نہیں ہوں، جب تک جان میں جان ہے میں پورے دیش میں ہندوستان جا کر کے بھی لوگوں کو کہوں گا کہ انگریزوں کی فوجوں میں بھرتی کرنا حرام ہے، انگریزوں کے ساتھ لڑنا ہمارے لیے فرض ہے، اور ان کو دیش سے نکالنا ہماری مذہبی ذمہ داری ہے۔ حضرت کسی کو نہیں بتلاتے ہیں، جب مالٹا کی جیل سے چھوٹ کر کے آئے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ آنے کے چند دنوں میں حضرت کا انتقال ہو گیا دلی کے اندر، حکیم اجمل خان کی کوٹھی پر حضرت کا انتقال ہوا۔ جب غسل کے لیے آپ کے کپڑے نکالے گئے اور آپ کی کمر مبارک دیکھی تو پوری کمر کے اوپر زخم پڑے ہوئے تھے اور کالی کالی پیٹھ ہو چکی تھی، غسل دینے والوں کو رونا آ گیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کلکتہ میں تھے، کلکتہ سے سیدھے جنازے میں آئے، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کے استاد ان کی پیٹھ کے اوپر اتنے بڑے بڑے زخم کیسے آئے، تو مولانا حسین احمد مدنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے اور روتے روتے کہنے لگے یہ میرا اور حضرت کا ایک راز تھا، مجھے فرمایا تھا کسی کو مت بتلانا، لیکن اب حضرت دنیا میں نہیں ہے، انتقال کر چکے، تو میں بتلا دوں کہ مالٹا میں 3.5 برس کی جیل میں انگریزوں نے حضرت کو اتنا مارا تھا کہ حضرت کی پوری پیٹھ زخمی ہو گئی۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم ہیں، پہلے استاد ہیں، پہلے شیخ الحدیث ہیں، تو آپ کوئی جگہ بنا لیجئے کہ جہاں آپ کی قبر بنے اور بڑا گنبد بنے کہ یہ ہندوستان کے آزادی کا بہت بڑا ثبوت ہے، مہان ثبوت ہے، اور اس دیوبند یونیورسٹی کا پہلا اسٹوڈنٹ ہے، آپ اپنی قبر کے لیے کوئی جگہ بناؤ۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میری قبر بنے، اس پر گنبد بنے اور اس پر لکھا جائے کہ یہ بھارت کا مہان سپوت ہے، آزادی کا ہیرو ہے، مجھے بھی پوچھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، میری چاہت کیا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت بتائیے آپ کی کیا چاہت ہے، تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا میری چاہت ہے میں انگریزوں کے سامنے میدان میں اتروں، انگریزوں کے سامنے لڑوں، اور लड़ते लड़ते मैं अंग्रेजों के सामने शहीद हो जाऊं, अंग्रेज लोग मुझे कत्ल करने के बाद मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देवे, जंगल के जानवर आवे और मेरी बॉडी को खा जावे, और कयामत के दिन में अल्लाह के दरबार में जानवरों के बदन से निकल करके आऊं, ये मेरी आरज़ू है। उलाइका आबाई, ये हमारे बाप दादा थे जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के खातिर इतनी अजीम कुर्बानियां दी। जब मुल्क आज़ाद, जब हजरत माल्टा से तशरीफ लाए तो बॉम्बे में इंटरनेशनल कांग्रेस और देश के हर धर्म के लीडरों ने आपका शानदार स्वागत किया कि ये वो इंसान है जिन्होंने देश की आजादी के लिए इतनी बड़ी जेल की सजा भुगती। तो उसी वक्त पर हजरत ने फरमाया कि हमें एक होकर के कौमी एकता के साथ देश की आजादी को आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो जाकर के अंग्रेज हमारा देश छोड़ के जाएंगे। अब बैठे मशवरा करने के लिए, तो मशवरे में खुद हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अली की नजर वो अफ्रीका से आए हुए उस बैरिस्टर के ऊपर पड़ी कि ये जो मोहनदास करमचंद गांधी है इसी को लीडर बनाया जाए और इनके साथ रह करके हम लोग आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ावे। मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह ने महात्मा का लकब दिया। महात्मा का लकब देने वाले हजरत मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह थे। और ये जो जमीयत उलमा, इस जमीयत उलमा के फंड से महात्मा गांधी जी को पूरे देश का सफर करवाया गया और पूरे देश में ऐलान किया गया कि अब हम मिलजुल करके आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए मैं बहुत जवाबदारी से कहता हूं कि मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी जी बनाने वाले हजरत शेखुल हिंद मौलाना मोहम्मद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह थे। और खुद गांधी जी के शब्द में आपको बताऊं, 1947 में बहुत दुख के साथ हमारे देश का पार्टीशन हुआ। 1947 में हमने आजाद, हमने भागले मांगे नहीं थे। मैं बहुत फखर से कहता हूं भागले पार्टीशन इसका विरोध करने वाले हम थे। जिन्होंने किए होंगे वो किए होंगे, जमीयत उलमाए हिंद दारुलूम देवबंद इनका नजरिया ये था कि हिंदुस्तान के भागले नहीं होने चाहिए। लेकिन दुख की बात, कभी मौका होगा तो मैं हिस्ट्री के एक एक रेफरेंस के साथ बताऊंगा भागला पढ़ाने वाले कौन थे। मौलाना आजाद की बुक छप चुकी इंग्लिश में, जो उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे मरने के 30 बरस के बाद उसको छपवाना, वो छप चुकी है, इंडिया विंस फ्रीडम। उसमें मौलाना आजाद ने एक एक चीज खोली है कि भागले किसने पढ़वाए थे देश के। 1947 के अंदर जब देश के भागले हुए हैं तो गांधी जी का पहला प्रवचन, पहला भाषण जो ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर हुआ, उसके अंश पढ़ लो। गांधी जी ने उसके अंदर कहा था कि लोग मुझे कहते हैं, मेरे ऊपर दबाव करते हैं कि मैं मुसलमानों को कहूं कि पाकिस्तान चले जाओ। गांधी जी के ये शब्द थे, मैं किस जुबान से मुसलमानों को कहूं कि पाकिस्तान चले जाओ, इसलिए कि पूरा देश मीठी नींद में सोया हुआ था। मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने आजादी की लड़ाई की इब्तिदा की है, मैं उनको नहीं भूल सकता, मैं किसी हाल में इनको नहीं कह सकता कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। हम तो भागले के विरोधी थे, हमने कभी भागले को सपोर्ट नहीं किया। बल्कि एक बात मैं कहूं, जब कारगिल के अंदर पाकिस्तानियों ने जबरदस्ती जुल्मन कब्जा किया था, तो उस वक्त हमने हिंदू मुस्लिम मिलकर के 10,000 आदमी की रैली निकाली और उस वक्त वाजपेयी जी की सरकार चल रही थी, तो हमने मीडिया के जरिए वाजपेयी जी को मैसेज दिया था کہ میں ایک مسلمان ہوں, نیشنلسٹ مسلمان ہوں, راشٹروادی مسلمان ہوں. ہماری آرزو ہے, ہماری تمنا ہے. کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا تمہاری تمنا ہے تو میں کہوں گا کہ ہمارے لشکر کو کہو کہ کارگل سے پاکستانیوں کو ہٹانے کے بعد پھر بیرک میں واپس نہیں آنا ہے, آگے بڑھنا ہے. اور کہو کہ جاؤ اور جا کر کے 13 اگست 1947 کو اکھنڈ بھارت کا جو نقشہ تھا وہ نقشہ ہم پھر سے دیکھنا چاہتے ہیں. 14 اگست کو پاکستان بنا ہے, 15 کو ہمارا دیش آزاد ہوا. 13 اگست 1947 کو اکھنڈ بھارت کا جو نقشہ تھا وہ نقشہ پھر ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری آرزو. ہم نے کبھی اس پارٹیشن کو سپورٹ نہیں کیا ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ حضرت کے انتقال کے بعد جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابروں نے اس آزادی کی جنگ کو آگے بڑھایا. ہم نہیں بھول سکتے. آج بھی کراچی کے اندر وہ کوٹ موجود ہے, اس کی دیوار سے جا کے پوچھ لو, اللہ اس کو زبان دے. 1939 کے اندر حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا, انگریزوں کی فوج میں بھرتی کرنا حرام ہے. سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی, دوسرا وشو یدھ شروع ہوا, انگریزوں کو ہمارے دیش کے سپاہیوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے لالچ دے کر کے ہمارے بھارت کے سپاہیوں کو ان کی فوج میں جوڑنا چالو کیا. تو سب سے پہلے فتویٰ دینے والے 1939 کے اندر شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تھے. اور اس کے اوپر بڑے بڑے علماء کی سگنیچر کرائی, اس پر انگریزوں نے وہ فتویٰ جفت کیا اور جفت کر کے حضرت کے اوپر کراچی کی کورٹ کے اندر کیس چلایا. جب کیس چلا تو انگریز جج پوچھتا ہے, حسین احمد کیا تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی کرنا حرام ہے؟ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا, ہاں میں نے فتویٰ دیا ہے اور دیتا رہوں گا اور کہتا رہوں گا انگریزوں کی فوج میں بھرتی کرنا حرام ہے. تو انگریز جج کہتا ہے, حسین احمد تم جو بول رہے ہو تمہارے شبدوں کے اوپر کیا سزا ہو سکتی ہے, میں کیا چکادہ لکھوں گا, تم کو معلوم ہے کہ میں کیا چکادہ تم کو دے سکتا ہوں؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, اللہ کی کروڑ رحمتیں ان کی قبر کے اوپر نازل ہو, اپنی تھیلی میں سے کفن کا کپڑا نکالا اور وہ کفن کا کپڑا نکال کر کے انگریز جج کے ٹیبل کے اوپر ڈالا اور اس کے ٹیبل پر کفن کا کپڑا ڈال کر کے ارشاد فرمایا, میرے اس فتوے کی سزا مجھے معلوم ہے, اسی لیے میں دیوبند سے اپنا کفن ساتھ لے کر کے آیا ہوں تاکہ کراچی والوں کو میرے کفن کو تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے. حقیقت ہے جو کہا کسی کہنے والے نے, پتا پتا بوتا بوتا حال ہمارا جانے ہے. مولانا فرما رہے تھے نوجوانوں کو, اتہاس پڑھو, اتہاس جانو. پتا پتا بوتا بوتا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے. آج حقیقت یہ, اتہاس ہم ہی لوگ نہیں جانتے. بزرگان محترم ڈاکٹر میوارام گپتا خود لکھتے ہیں اپنی بک کے اندر, ان کے حوالے سے کہتا ہوں کہ 1857 کے بعد اس ملک کی آزادی کے لیے, ڈاکٹر میوارام لکھتے ہیں, اس ملک کی آزادی کے لیے 5.5 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر کے وہ شہید ہوئے ہیں. 5.5 لاکھ مسلمان, یہ ڈاکٹر میوارام گپتا کی لکھی ہوئی باتیں ہیں. یہ مکمل آزادی,
आजादी की तजवीज, आप हैरत में पड़ोगे कि 1925 के अंदर तर्के मवालात, तर्के मवालात का मतलब असहकार चरवण, असहकार चरवण की शुरुआत जमीयत उलमाए हिंद के अकाबरीन के जरिए से हुई, जिसमें मुल्क के 500 आलिमों ने उस फतवे के ऊपर सिग्नेचर की थी। 1928 के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करमसद से बारडोली आकर के ना कर की लड़त चलाई। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने जब ना कर की लड़त चलाई तो उस लड़त के अंदर फतवा मुफ्ती अकीकुर रहमान साहब उस्मानी, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सहारवी, इमामुल असर अल्लामा अनवर साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी उस चरवण की मदद के लिए एक फतवा लिखा। और वल्लभ भाई पटेल कहते थे कि मेरी इस चरवण को इनके फतवे के जरिए से जबरदस्त मदद मिली है। आज भी हमारे बारडोली में गांधी आश्रम में वो फतवा मौजूद है जो वल्लभ भाई की 1928 की चरवण के वक्त पर मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब इन हजरात ने वो फतवा लिखा था। 1930 के अंदर जब महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की चरवण चालू की, नमक के ऊपर टैक्स लगने के ऊपर, और गांधी जी की ये दांडी यात्रा अहमदाबाद आश्रम से निकल करके दांडी जाते हुए हमारी दाभेल यूनिवर्सिटी के बिल्कुल 4 किलोमीटर दूर धामण नाम का एक गांव, वहां धामण के अंदर आज भी उस चीज को देखने वाले हमारे हिंदू वड़ील मौजूद है। वो खुद साक्षी है इस बात के कि जब गांधी जी धामण पहुंचे, रात का कयाम उन्होंने वहां किया, तो दाभेल मदरसे से मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सिहारवी, मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब उस्मानी गए और जाकर के उनको हदीस पेश की कि अंग्रेजों ने जो नमक के ऊपर टैक्स लगाया है, ये टैक्स लगाना गलत है और ये टैक्स लगाना शरीयत इस्लामी के एतबार से जायज नहीं है। तो धामण के बाद दूसरे दिन नवसारी में जाहिर सभा में महात्मा गांधी जी ने अलल ऐलान कहा कि दाभेल के मौलवियों ने मेरी दांडी यात्रा के लिए हदीस भेजी और उसकी वजह से मेरी दांडी यात्रा को नया जॉब मिला है। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, हमारी गुजरात सरकार ने एक पुस्तक छपवाया है दांडी कुछ के नाम से, उसमें पेज नंबर 256 से लेकर 267 के ऊपर ये पूरी दास्तान लिखी हुई मौजूद है। मोहन दांडीकर ने अपने कलम से यह बात लिखी है कि गांधी जी ने दूसरे दिन नवसारी की जाहिर सभा में कहा कि दांडी यात्रा को नया जॉब जो मिला वो दाभेल मदरसे के मौलवियों की हदीस की वजह से, उन्होंने हदीस लिख करके भेजे। और फिर मौलाना अतीकुर रहमान साहब, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सिहारवी, ये लोग दांडी यात्रा में शामिल हुए और दांडी तक गए और जाकर के उन्होंने भी अंग्रेजों की सजाएं भुगती और उनके खिलाफ भी मुकदमा हुआ, यहां तक के उनको नौकरी भी छोड़वाई गई और नौकरी छोड़वा करके उनको निकल के चले जाना पड़ा, ऐसे सख्त हालात आए। बुजुर्गान मोहतरम, इस मुल्क को आखिरी जो सबसे बड़ी चरवण मिली 1942 के अंदर, भारत छोड़ क्वाइट इंडिया, ये 1942 की आखिरी चरवण, इस आखिरी चरवण को शुरू करने वाले जमीयत उलमाए हिंद के अकाबरीन, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बाद में सपोर्ट किया और सपोर्ट करके महात्मा जी, नेहरू जी, सरदार जी, इन सब ने मिल करके जमीयत उलमा के साथ मिल करके भारत छोड़ो चरवण को आगे बढ़ाया। 1757 से 1947 तक 190 वर्ष तक इस मुल्क की आजादी के लिए जब जान की जरूरत पड़ी जान की कुर्बानी दी, माल की जरूरत पड़ी माल की कुर्बानी दी, फतवे की जरूरत पड़ी फतवे की कुर्बानी दी, हर तरह की कुर्बानी देके इस मुल्क को आजाद करा है। कहानी कहने वाले ने बहुत अच्छा कहा, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी गर्दन कटी, फिर भी कहते हैं आज अहले चमन, ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। बुजुर्गों अपने बड़ों की कुर्बानी को याद करो, ये इतिहास ऐसे नहीं बनता। इतनी सारी कुर्बानियों के बाद हमारा देश आजाद हुआ है। और सुन लो कान खोल करके, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, हमारे बुजुर्गों की बात है, अपने वतन से अपने देश से मोहब्बत, ये हमारे धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारा मजहब हमें वतन के साथ वफादारी सिखलाता है। कोई हमारी वफादारी पर शक न करे। हर साल मुसलमान हज करने मक्का जाते हैं और हज का प्रोग्राम लाइव टीवी के ऊपर आता है। नहीं देखा हो तो मैं देखने की आप सबको आमंत्रण देता हूं कि अब जब हज आए तो टीवी पर लाइव हज का प्रोग्राम देख लेना, जहां पूरे जगत से पूरी दुनिया से आकर के मुसलमान लोग हज यात्रा करते हैं और अरफात के मैदान में जो हज की इबादत करने के लिए जमा होते हैं, आप देख लेना कि हिंदुस्तान से जाने वाले हाजी पवित्र हज के अंदर भी भारत देश के तिरंगे झंडे के साथ होते हैं और दुनिया को बताते हैं कि हम हज की पवित्र यात्रा करने भी आते हैं अपने मुल्क के झंडे के साथ, और सारी दुनिया को बताते हैं कि हम हिंदुस्तान के चाहने वाले हैं। बुजुर्गान मोहतरम, मैं अपने सब देशवासी भाइयों से कहूंगा कि आपने फुल दस्ता देखा होगा ना, फ्लावर पॉट जिसको कहते हैं, गुलाब मोगरा चंपा चमेली, किस्म किस्म के फूल को जमा करके एक फूलदानी बनती है, कलगी बनती है। शायद ये मेरी बात सबको काम आ जाए, एक अलग अलग रंग के अलग अलग खुशबू के फूल को जमा करके फूलदानी तैयार होती है। आप किसी फूलदानी को देखो तो अगर उस फूलदानी में कलगी में हरे फूल खिला हुआ हो, कोई भी फूल करमाया और मुरझाया हुआ ना हो, तो फूलदानी बहुत अच्छी लगती है। और अगर उस कलगी में फूलदानी में एक फूल भी अगर मुरझा जाएगा तो लोग कहेंगे कि यह फूलदानी ऐसी है जिसमें एक फूल मुरझा गया हो। मेरे भाइयों देशवासियों, मैं आप सबको कहूंगा, हमारा हिंदुस्तान भारत देश पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन फूलदानी जैसा है। इस देश में बसने वाली तमाम कौमें ये उसके खिलते हुए खूबसूरत फूल है। अगर ये तमाम कौमें खिली हुई होगी, प्रगति पर होगी, तरक्की पर होगी, तो हमारी ये फूलदानी पूरी दुनिया में अपनी स्वास और खुशबू फैलाएगी। और अगर एक फूल भी मुरझा जाएगा तो सारी दुनिया के सामने हमारी फूलदानी का अच्छा असर नहीं जाएगा। इसलिए मैं फिर से आपको कहता हूं, आओ अल्लामा इकबाल के उस शेर को हम याद करें, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और भाइयों, जब इस देश में तमाम लोग कौमी एकता के साथ रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, मोहब्बत से प्यार से रहेंगे और इस देश की प्रगति के लिए फिक्र करेंगे, तब जाकर के इकबाल का ख्वाब पूरा होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा। उस वक्त पर वो ख्वाब पूरा होगा।
इस जमाने की, आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत हमारे देश की कौमी एकता है। जब हम एकता के साथ रहेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहेंगे। मौलाना आजाद ने एक मर्तबा दिल्ली में कहा था आजादी से पहले कि अगर आसमान से कोई फरिश्ता आवे और कुतुब मीनार पर खड़ा हो जावे और खड़े होकर के वो फरिश्ता ऐलान करे कि हम भारत देश को आजादी देना चाहते हैं लेकिन हिंदू मुस्लिम को अलग करके आजादी देना चाहते हैं, तो मौलाना आजाद ने कहा था कि उस आसमान के आने वाले फरिश्ते को भी हम कहेंगे कि तू वापस चला जा, ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम में नफरत हो, ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए। हमें तो वो आजादी चाहिए जिसमें हमारी कौमी एकता हो। इसीलिए आओ, मैं अपने नौजवानों को कहूंगा, इतिहास की बुकें मौजूद हैं, इतिहास पढ़ो। जो कौम अपने इतिहास को पढ़ती है वो जिंदा होती है, जो अपने इतिहास को भूल जाती है उनको दुनिया से मिटाना आसान हो जाता है। अपने बड़ों के इतिहास को पढ़ो, और आज के जमाने की सबसे बड़ी जरूरत अपने देश की कौमी एकता, इसको आम करने की फिक्र करो। मैं फिर से जमीयत उलमा जिला पाटन के जिम्मेदारों को दिलो जान से मुबारकबाद देता हूँ। एक बहुत अच्छा कदम आपने उठाया है। पाटन की भूमि के ये तमाम नागरिकों को, मैं नहीं कहता हिंदू मुस्लिम, आज हम इस वक्त इस हमारे तिरंगे झंडे के साये में बैठे हैं, हम सब देशवासी हैं, भारतवासी हैं, हम सब एक हैं। बहुत अच्छा ये कदम उठाया है। अल्लाह हमारी इस मुल्क को हर नौ की तरक्की से मालामाल फरमाए, इस मुल्क को नजर बद से बचावे, यहाँ कौमी यकजहती हो, सब कौम के लोग आपस में मिलजुल करके अपने देश को आगे बढ़ाएं। इन्हीं दुआओं के साथ, आरजू और तमन्नाओं के साथ, तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
बहुत बहुत माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। हमारे बीच में मेहमान इस पटन शहर के पुराने उलमा किराम हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैं इनको दावत करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम के सिलसिले में कुछ मसूदात अच्छे हैं, उसके बाद दुआ होगी, तो सब मन्ना बैठे रहे और दुआ तक जमे रहे।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہم حدیث رسول اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار کا نظہار ہے، اور درود و سلام ہو اللہ کے نئے بندوں پر جس کو اللہ نے دنیا میں سلام کی ہم نمان اور اچھا راستہ بتانے کے لیے بھیجا، خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ